ओम शांति। आज का टॉपिक है बेहोशी के कारण। तो आज हम लोग इसमें ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो बेहोशी के और क्या क्या अर्थ होते हैं और वो बाबा के ज्ञान में उनका कैसे कैसे बाबा उन वर्ड को यूज करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो आप लोग भी बताएंगे कि बेहोशी के क्या क्या और अर्थ हो सकते हैं। बेहोशी जैसे जी विस्मृति और
असंतुष्टता।
अच्छा, और क्या हो सकता है अर्थ बेहोशी का? कोई व्यक्ति बेहोश है तो वो कैसे उसको और क्या क्या अर्थ में बोला जा सकता है जी? संज्ञाहीन, शून्यवस्था, संवेदना शून्य हो गया जी, अचेतनता की अवस्था हो गई, मूर्छा, मूर्छित है। बाबा इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं, माया ने मूर्छित कर दिया है। तंद्रा, जो नींद होती है, नींद भी एक बेहोशी की स्थिति होती है, अप्राप्ति है। कहीं पे भी कोई चीज की कमी है, अस्थिरता है, तो वहां बेहोशी है। तो मूर्छा हो गया, अचेतनता हो गया, विस्मृति हो गई, तंद्रा है, नींद की अवस्था। उदासीनता भी एक बेहोशी का ही अर्थ है, उदासीन हो जाना। तो ये हो गए बेहोशी के अर्थ। अब बेहोशी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति सामान्य और ये बेहोश? बेहोश दिखने वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हो सकते हैं? होश में नहीं, वो तो पता है, लेकिन कुछ तो उसके लक्षण होंगे ना, कि जैसे देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये नॉर्मल नहीं दिख रहा। बिल्कुल, उसका जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन का और उसका एक्टिविटी का, वो बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है। सोच कुछ रहा है, कर कुछ रहा है और हो कुछ रहा है। मतलब कि लक्षण ये है मेन की बेहोशी में व्यक्ति के मानसिक और व्यवहारिक जो उसका प्रभाव होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वो मानसिक रूप से क्या कर रहा है उसको खुद भी नहीं पता, विस्मृति और व्यवहारिकता, मन जैसा वैसा उसका कोऑर्डिनेशन। तो ये है मेन की बेहोशी में ये होता है कि हमें खुद नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति है। तो बेहोशी के लक्षण है। अच्छा, बेहोशी के कारण, तो आप लोग बताएंगे पहले कि बेहोशी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, अपने अपने हिसाब से सोच के बेहोशी के कारण क्या हो सकते हैं, जनरल क्या कारण हो सकता है। कोई व्यक्ति बेहोश हो रहा है, अभी ज्ञान मार्ग से नहीं लेते ऐसे जी, वीकनेस के कारण, राइट। वो तो है, लेकिन वो बेहोश हो गया है ना, तो बेहोश होने का कारण क्या हो सकता है? राइट, शॉक लगा, टेंशन में बेहोशी होती है, हाँ, कमजोरी हो गई तो उसमें भी बेहोशी आ गई, ये फिजिकल हो गया जी। तो देखिए, ऐसे तो मेडिकल में कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है या बार बार बेहोश हो रहा है, तो उसके ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ब्रेन को ऑक्सीजन कम होता है तो बेहोशी आती है। अब ब्रेन को ऑक्सीजन दो मेजर कारण से कम होती है। पहला, शॉक लगता है। शॉक दो तरह के होते हैं, एक तो बहुत बड़ा दुख आ जाए अचानक, तो वो भी शॉक है, वो समझ नहीं पाएगा और संभाल नहीं पाएगा, बेहोश हो जाएगा। दूसरा है कि बहुत खुशी आ जाए, अगर बहुत ज्यादा खुशी उसको अचानक से मिल गई तो भी वो शॉक में चला जाता है, तो उसमें उसकी स्थिति बेहोशी वाली होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे संवेदनात्मक आघात कहते हैं, शॉक। तो एक ये हो गया, और दूसरा निर्णय नशा। अगर कोई व्यक्ति नशे की स्थिति में है तो भी ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब होती है और वो बेहोशी की स्थिति, मतलब लड़खड़ाने वाली स्थिति उसकी बन जाती है। तो ये दो मेजर जो मेडिकली बताया गया है कि ये, और चोट लगने पे भी, अगर स्पाइन में चोट लगी जर्क, वो तो थर्ड। ज्ञान में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये दो बहुत ही मेन टॉपिक है कि पहला संवेदनात्मक आघात लगना, उससे कारण बेहोशी आ गई, मतलब मानसिक स्थिति उसकी कमजोर है, तभी तो उसको शॉक लगा। अगर वो मेंटली वो स्ट्रांग होता तो उसको शॉक लगता ही नहीं, वो अपने आप को हैंडल कर लेता। सेकेंड है कि ऑक्सीजन की नशे के कारण होती है, अल्कोहल है, ड्रग्स है आजकल बाहर, लेकिन ब्राह्मण जीवन के भी अपने नशे होते हैं। तो अगर ज्ञान मार्ग में देखा जाए तो बेहोशी का संवेदनात्मक आघात जो है, बाबा मुरली में अक्सर कहते हैं कि जो योगी होता है उसका मन एकदम संतुलित मतलब बुद्धि स्थिर और मन संतुलित होना चाहिए। संतुलित मन का मतलब है कि कुछ भी हो रहा है उतना अंदर प्रभावित नहीं होगा जितना बाहर वाले लोगों। तो जैसे एक योगी है, उसको अगर बहुत बड़ी दुख की बात भी पता चलती है तो वो अपने ज्ञान स्वरूप में रह के उसको स्थिर बुद्धि से सोचता है और फिर उसके बाद उसका प्रभावित होता है कि हाँ इतना है, लेकिन उतना डिस्टर्ब नहीं होता और खुशी की बात है, तब भी वो बैलेंस रहता है। लेकिन जब ब्राह्मण आत्माएं जो योग में कमजोर है या जिनका मन जो है वो शक्तिशाली नहीं है, तो अगर उनको बहुत दुख की बात आती है, वैसे तो ठीक चल रहे थे कि सुबह अमृत बेला कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, धारणाओं पे भी चल रहे हैं, लेकिन अचानक से शॉक लग गया, दुख आ गया कोई बहुत बड़ा, तो सबसे पहला टारगेट बाबा हो जाते हैं। हमने इतना सब किया, इतने सालों से चल रहे हैं, बाबा ने ऐसा कर दिया मेरे साथ। ये शौक की स्थिति फिर उसको डिस्टर्ब कर, बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। वो क्या कर रहा है, वो ब्राह्मण जीवन से बेहोश हो जाता है। जो बाबा की श्रीमत है उनसे उसको बेहोशी, मतलब वो खुद ही नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। एक तो ये हो गया, दूसरा बहुत खुशी आ गई तो खुशी में भी एकदम बेहोशी आ जाती है। कैसे कि कोई खुशी की बात आई तो उसको लगता है कि मैं कितनों को बता दूं कि मैंने ये सेवा की या ये अचीवमेंट किया, तो वो क्या करता है कि बताओ ठीक है, लेकिन वो क्या व्हाट्सएप पे लग गया, सेंटर पे जाएगा, जो मिला उसी को पकड़ के कि मैंने ये किया, तो उसमें क्या छूट गया, बाबा का जो श्रीमत है, जो बाबा की है कि मेरी याद में रहना है, बताया खत्म बात, सेवा हो गई। लेकिन वो उसको वो खुशी भी उसको हजम नहीं होती, फिर वो भी बेहोशी है कि बाबा से दूरी हो गई। तो ये हो गया। अब नशा, ब्राह्मण जीवन के नशे क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये ब्राह्मण नशे में है, मतलब बेहोशी की स्थिति में जी, राइट, विज्ञान के आकर्षण, माया के आकर्षण कह लीजिए उसे, दूसरा अभिमान, ये मैंने किया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो मतलब पहला तो है देह अभिमान, बाबा हमेशा मुरली में, शायद ही कोई मुरली हो जिसमें बाबा ये ना कहते हो देह अभिमान को छोड़ दो, देही अभिमानी की प्रैक्टिस करो। तो पहला तो है अभिमान, देह अभिमान, दूसरा है माया के आकर्षणों की बेहोशी, मतलब वो नशा। तो देह अभिमान में बाबा जो है, सबसे पहले बाबा कहना है, श्रीमत है कि आप दूसरों को रिगार्ड देना है। यहाँ पे अभिमान मतलब होता है कि खुद को महत्व देना, अहम को महत्व देना। तो देह अभिमान मतलब कि मेरी इंपॉर्टेंस रहे। और बाबा का कहना है कि ब्राह्मण बनते ही सबसे पहला है कि दूसरों को रिगार्ड दो, दूसरों को खुशी दो, उनको सम्मान दो, उनको स्नेह दो, उनको सहयोग दो आगे बढ़ने में। बाबा कहते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ाता है वो स्वयं को आगे बढ़ाता है। और अगर कोई आत्मा बेहोशी मतलब नशे की स्थिति में है, देह अभिमान में है, तो पता चलता है लेग पुलिंग करना, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको कैसे हम रोक दें या डिस्टर्ब करें योग में। सेकंड की बाबा कहते हैं दूसरों को सुख दो, वो कहता है मुझे कैसे सुख मिले, सब मेरे को कैसे पैंपर रखें, मेरी तारीफ हो, मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। तो ये भी एक ये नशे की स्थिति तो हुई कि हमको पता है कि श्रीमत क्या है, लेकिन हम अपने को सेल्फ मतलब खुद की वो अल्पकाल की संतुष्टि होती है खुशी, उसके लिए देह अभिमान में आ गया। तो देह अभिमान हो गया। और सेकंड था कि माया के आकर्षण। तो माया, वैसे तो ब्राह्मण आत्मा सब छोड़ चुकी है, आई उसने रहन सहन जो भी है दुनिया भी सब छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी एक आकर्षण उसको हमेशा पकड़ के रखता है। तो क्या हुआ, लेकिन उसने भी माया को नहीं छोड़ा है, वो भी बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि वो घूम फिर के वो वही क्या है, वो रीजन, वो क्या चीज है माया का, कौन सा आकर्षण, मोबाइल और सुख सुविधाएं भी। सिर्फ मोबाइल को ही हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, जो हमें सुख सुविधाएं मिली हैं कि बाबा, मैं जब यहां आई अभी तो मैंने देखा कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, पहले मैं मुरली में सुनती थी कि बाबा कहता है मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि भगवान सर्वेंट कह रहा खुद को, जब मैं यहां आके देखी एक्चुअल में ओबीडियंट सर्वेंट है वो, अपने बच्चों को कि बच्चे सिर्फ मेरी याद में रहे, उनको कुछ भी ना करना पड़े, सुबह सो के उठने से लेकर रात को बेड पे जाने तक हर चीज की व्यवस्था है, हर चीज, गर्म पानी चाहिए गर्म पानी है आपको, दूध कॉफी चाय बिना चीनी की, मतलब मैं देख के ही इतना कौन ख्याल रख सकता है। घर में भी हम रहते हैं, एक दो चार लोग पांच लोग, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। यहां तो कोई कमी ही नहीं है, मतलब वंडरफुल बात है ये मुझे लगी। तो एक्चुअल में ओबीडियंट सर्वेंट है वो, और मतलब हमें उसकी कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उसने। फिर मैंने सोचा इतनी क्यों व्यवस्था की गई है, मतलब पहले भी तुम दादी लोग थी तो किस तरह से, तब योग बहुत अच्छा था, तब पता चला कि कहते हैं बाबा के बच्चे तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता हूं कि तुम भक्ति मार्ग की तरह मेहनत करो, तुम सिर्फ मेरी याद में रहो, मेरी याद में रहो, यही मैं चाहता हूं। इसलिए शायद ये सुबह से लेकर रात तक यहां जो सेवा बाबा देते हैं, मेरे ख्याल से ये इसीलिए देते हैं। लेकिन फिर भी उस सेवा का मिस यूज किया जाता है, या मिस यूज करते हैं, मैंने देखा है, नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक नशे की स्थिति है। और मोबाइल तो खैर है ही, मोबाइल तो बहुत डिस्टर्ब करता है। तो सुख सुविधा जो है ये भी माया का आकर्षण ही है। वो कहते हैं कि तपस्या के लिए वन में जाओ या ऐसा वैसा अकेले रहो, तपस्या सब हर चीज की कमी हो तभी तपस्या हो सकती है। बाबा कहता है मैं सब देता हूं फिर देखता हूं कौन तपस्वी। चैलेंज तो उसके बीच में रह के ही एक्सेप्ट किया सकता है। न्यारेपन वो प्यार भी कह लो और उसकी परीक्षा भी कह लो, क्योंकि बिना मांझे थोड़ी फिश का मालिक बना देगा, ठोक बजा के तो बनाएगा। तो पहले हर चीज देता है कि देखे किस लिमिट तक अलबेले हो सकते हैं। अलबेलापन आएगा, देह अभिमान आएगा, दूर दूर दूर, जिसके लिए सब छोड़ा उसी से दूर। मतलब खुद पे हंसी भी आनी चाहिए, लेकिन वो माया, वो बेहोशी की स्थिति है ना, तो पता ही नहीं कि हम बेहोशी की स्थिति में। तो ये हो गया सेकंड की आकर्षण। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कारण ये सब होता है, ठीक है। हमारे ब्राह्मण जीवन की भी ऑक्सीजन है। ये दो जो बेहोशी आई, संवेदनात्मक आघात लगा और नशा, नशा मतलब देह अभिमान और माया का आकर्षण। ऑक्सीजन क्या है ब्राह्मण जीवन की आप लोग के हिसाब से? याद, ज्ञान और योग। कल बाबा ने कहा है सत्व प्रधान बनना है तो सेवा, श्रीमत पे चलना, मतलब ऐसी एक जी मर्यादाएं। ब्राह्मण जीवन में अगर वो ऑक्सीजन नहीं है, बेहोशी आना शुरू हो जाएगी। वो एक चीज बाबा हमेशा मुरली में उसको टारगेट करते हैं, हमेशा बताते हैं, हमेशा स्मृति में लाते रहते हैं कि बच्चे इस चीज को हमेशा पकड़ के रखो। वो तो पता है सब, वो तो छोटा सा बच्चा भी आ जाता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जो ये बोल के आते हैं कि मैं आत्मा हूं, बेहोश हो रहे हैं। रीजन क्या है उस बेहोशी का? ये पता होने के बाद मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, परम धाम घर है, ऐसे रहना है, सत्युग आने वाला है, संगम युग चल रहा है, मुरली कर रहे हैं, अमृत बेला कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, फिर भी बेहोश हो रहे हैं। वो ऑक्सीजन कौन सी है जो बेहोशी आ रही है उसकी कमी से? वो ऑक्सीजन है मन मनाभाव की स्थिति। हर चीज उसी से जुड़ी हुई है। मन मनाभाव का मतलब है बाबा की मुरली सिर्फ मन को ही टारगेट करती है। अगर मन की स्मृति श्रेष्ठ है तो वृत्ति श्रेष्ठ है, वृत्ति श्रेष्ठ है तो दृष्टि श्रेष्ठ है, कनेक्टेड है। और जब दृष्टि श्रेष्ठ है तो पावरफुल स्थिति होती है, पावरफुल स्थिति बन जाती है, तो शक्तिशाली स्थिति जिसे कहते हैं। तो बाबा का कहना है कि शक्तिहीन हो तभी तो बेहोशी आ रही है, आघात लग रहा है, माया खींच ले रही है, देह अभिमान में नशे में आ रहा हूं, मतलब कहीं कोई वीकनेस है। वीकनेस मन में है, शरीर में तो है नहीं। तो बाबा का महामंत्र है, बीज मंत्र है, और वो क्या कहते हैं उसको, एक कहते हैं ना मन मनाभाव को, कौन सा एक वर्ड देते हैं बाबा, वशीकरण मंत्र कहते हैं, वशीकरण मंत्र कहते हैं उसको। तो जी हाँ, जादू का मंत्र भी है, वशीकरण मंत्र भी है। अभी आज की जो अव्यक्त मुरली है उसमें भी बाबा ने बेहोशी के बारे में इनडायरेक्टली चर्चा की है। सबसे बड़ी, सबसे मेन पॉइंट पे ही चर्चा की है आज, कि कैसे ब्राह्मण आत्माएं बेहोश है। दुनिया के लोग तो बेहोश हैं, वो तो पता ही है, उनको तो बताओ भी तो कुंभकर्ण की नींद में, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं कैसे बेहोश होंगे, क्या लक्षण है और क्या कारण है, वो भी बाबा ने बताया आज की मुरली में। तो बाबा ने बोला कि आज बाबा बोल रहे ब्राह्मण जो जीवन है और ये जो संगम युग है, ये पूरे कल्प के खाते को जमा करने का युग है। बाबा ने कहा है कैसे जमा करेंगे? तो भगवान कहा कि तुम जब जो सोचा वो किया, ये शक्तिशाली मन की स्थिति होती कि उसने जो शुभ संकल्प किया, सोचा और वो किया तुरंत। तो भगवान ने कहा ये तीव्र पुरुषार्थी की जो स्थिति होती है वही जो है तुम्हें पूरे कल्प में, 21 जन्मों के लिए नहीं, भगवान ने कहा पूरे कल्प का खाता जमा होता है। आधा कल्प आप राजपद पाते हो और आधा कल्प आप पूज्य पद पाते हो, पूजा होती है आपकी। तो इतनी बड़ी बात बाबा बोले हैं, वो स्मृति दिला रहे हैं। हम द्वापर से भूल गए थे कि मैं आत्मा हूं, विकारों में चली गई, देहाभिमान में आ गई, चलो कोई नहीं, ड्रामा में ऐसा था। अब परमात्मा आए हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, स्मृति दिला रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शक्तिशाली हो, मैं परमात्मा हूं, हमारा घर वहां है, यहां तो तुम ड्रामा में आए हो पार्ट प्ले करने, ये स्मृति दिला रहे हैं। आज भी स्मृति दिलाई मुरली में कि ये जो तुम्हारा जन्म है संगम युग में, तुम्हारा ब्राह्मण जन्म है, पूरे कल्प का खाता जमा कर सकते हो, 21 जन्म ही नहीं, मतलब ये लास्ट जन्म तक का खाता, मतलब मैं आज जिस स्थिति में हूं ये मैंने उस समय किया होगा योग, तब मेरे को आज ये अचीवमेंट्स मिल रही, खाता जमा हुआ होगा, है ना, आज की डेट तक का भी हो रहा है, आगे भी जो होगा वो मैंने उस समय बैठ के किया होगा योग जो बाबा की श्रीमत, तब मेरे को ये सब मिल रहा है। तो स्मृति दिलाया, लेकिन बाबा कहते कि जैसे ब्रह्मा बाब ने एक सेकंड में तन मन धन का दान कर दिया, बाबा ने कहा उनको निश्चय था परमात्मा है, तो उसको कहा कि यही महादान है, यही महापुण्य है बाबा ने कहा, और यही महान आत्मा है जो ऐसा कर सकती है, वही महान आत्मा है। फिर बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे जो है वो सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, 100% ऐसी सेवा करेंगे, सोचा था और उसके बाद फिर टाइम ले लिया, करने में समय ले लिया, तो क्या हुआ, वेस्ट आ गया, उस समय खाली स्थान मिल गया तो माया आ गई। माया तो सर्वव्यापी है ना, बाबा कहें कि मैं तो सर्वव्यापी नहीं लेकिन माया सर्वव्यापी, तो बाबा ने कहा है माया सर्वव्यापी, आपने सोचा बहुत अच्छा एकदम पावरफुल कि मैं ऐसे योग करूंगा, ऐसी सेवा करूंगा, फिर टाइम ले लिया करने में, कोई नहीं आज करते हैं, चलो कल देख लेंगे, कल कर लेंगे, करना तो है ही सेवा, ऐसे ऐसे करके टाला, जहां टाला वहां माया ने चांस ले लिया, और वो पोटेंशियल जो 100% था, जो हो सकता था अचीवमेंट, जो प्राप्ति हो सकती थी, वो घट गई, 100 से 40 30 तक आ गए। बाबा ने कहा है कि ये भी बोला है आज की वो झाटकू होता है, वो एक झट में जो बलि चढ़ती है बिना चिल्लाए, वो महाप्रसाद में स्वीकार की जाती है। इनके कहने का मतलब है शुभस्त्र शीघ्र, शुभ संकल्प आया और तुरंत उसको फॉलो करो, अब नहीं तो कब नहीं। और यहां क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार, ब्राह्मण आत्माओं की बात हो रही है, सोचते हैं कि इतना पावरफुल संकल्प करते मैं ऐसी सेवा करूंगा, या मुझे आज से ये बाबा की श्रीमत माननी है, ऐसा पुरुषार्थ करना है, और फिर उसको डिले करते हैं, तो कमजोरी की स्थिति होती है और व्यर्थ आने से परसेंटेज कम हो जाता है, प्राप्ति कम होती है, अनुभव कम होते हैं। फिर कहते हैं कि बाबा मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ प्राप्तियां नहीं हो रही हैं, योग कर रहा हूं लेकिन मन खुश नहीं है, कई दिनों से मन लग नहीं रहा कहीं पे, मुरली भी सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, धारणाओं पे भी चल रहे हैं, इतनी सूक्ष्म, हाँ वो सूक्ष्मतम में कहीं और लग रहा है, मन इतना सूक्ष्म होता है और इतना स्पीड से, इतनी स्पीड से कि अभी उस दिन संडे मुरली मान था कि ऐसा शक्तिशाली शस्त्र है ये भी कि चाहो तो यहां से बैठे कहीं किसी को भी चेंज भी कर सकते हो, इतना पावरफुल ये शस्त्र है, लेकिन उतना ही नुकसानदायक भी है। कब ब्राह्मण आत्मा को ही वो अंदर वो दीमक की तरह नुकसान कर रहा है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि कमजोर है, क्योंकि सप्लाई कम है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है इसलिए कमजोरी में जा रहा है। तो अब ये ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए, मन मनोभाव की स्थिति कैसे लाई जाए, ये वशीकरण मंत्र जो होता है, ये बाबा ने इसको वशीकरण मंत्र क्यों कहा, कोई बताए? और माया को वश करता है, और कोई आंसर, मतलब इसको वशी हमेशा कहते हैं वशीकरण मंत्र है, महामंत्र है, तो क्यों इसको कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, ये दोनों राइट आंसर हैं, क्योंकि मन हमें दूसरों को थोड़ी वश में करना है, मेरा खुद का तो मन कंट्रोल में नहीं तो मैं दूसरों को क्या कंट्रोल करूंगी ना, तो मन मनोभाव वशीकरण मंत्र मेरे खुद के लिए बाबा ने दिया, अपने मन को वश में करने का ये मंत्र है। फिर माया को भी मंत्र ये कंट्रोल करता है। कैसे? जब मेरा मन ही कंट्रोल में है तो माया क्या होती है? कमजोर मन की एक रचना है। माया कुछ भी नहीं है, माया एक कमजोर मन के हमारे कमजोरी की ही रचना है, कोई और चीज होती ही नहीं है। तो ये दोनों चीज टारगेट हो जाती है। मन मना भाव की जो वशीकरण मंत्र है, इससे हमारी जो मन है वो तो स्टेबल होना शुरू होता है, फोकस्ड होता है। जब कोई चीज कहीं फोकस्ड होती है तो पावरफुल हो जाती है धीरे धीरे, और फिर माया को चांस नहीं मिलता। तो जिन ब्राह्मण आत्माएं ये जो टालने वाला, डिले करने वाला जो ये संस्कार आ गया है, तो ये बहुत फिट है ये मंत्र मन मना भाव का, इसको सिद्ध करना है। तो बाबा ने मन मना भाव के वशीकरण मंत्र को सिद्ध करने के तरीके बताए, अगर किसी को याद हो तो मुझे बताएं। बिल्कुल सही आंसर। जो ये मन मना भाव का जो वशीकरण मंत्र है, इसको सिद्ध करने, क्योंकि विधि से ही सिद्धि मिलती है। हम अगर किसी चीज को विधि से कर रहे हैं, 100% वो सिद्ध होके रहेगा। और इस मंत्र को सिद्ध करना हर ब्राह्मण आत्मा का एक फर्ज है, ड्यूटी है, क्योंकि माया चांस लेने में पीछे नहीं हटती। कितने बड़े महारथी, बाबा मुरली में कहते हैं, कितना बड़ा बड़ा महारथी होगा लेकिन माया हप कर लेती है। अहो मम माया, बाबा ऐसा नहीं, ऐसे तारीफ करते हैं, वो उस लायक होगी तभी तो करते हैं। तो वो वशीकरण मंत्र को सिद्ध करने के लिए मनन शक्ति की जरूरत होती है। मन किसी को वश में करना तो पावर चाहिए, किसी को भी, स्थूल में भी देखे कहीं बाहर भी, किसी को भी वश करना पावर चाहिए। तो मन को भी वश करने के लिए क्या पावर चाहिए? मनन शक्ति, शक्ति चाहिए, मनन की शक्ति चाहिए। तो मनन शक्ति, किन चीजों का मनन करना है? मुरली में रोज बाबा बताते हैं जी, स्थिति का और सोमान का। अभी लास्ट संडे की मुरली थी जिसमें सोमान और वरदान के लिए बाबा ने कहा था, और मनन से ही तो निकलेगा, मंथन है ना वो। देखिए 1979 फरवरी की अव्यक्त मुरली है बाबा की, उसमें उन्होंने बताया है कि मनन शक्ति कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे मनन शक्ति से हम मन मना भाव की स्थिति को पा सकते हैं, मतलब सिद्ध कर सकते हैं। तो उसमें बाबा ने 6 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहले तो सोमान जो हमें मिलता है, रोज की साकार मुरली वही नहीं होती है। लोग कहते वही तो है, वही तो है। रोज की साकार मुरली में ये 6 के 6 पॉइंट हमें मिलते हैं कहीं ना कहीं, और हमें इसको नोट भी करने हैं, तभी तो मनन करेंगे और तभी तो शक्ति आएगी और तभी हमारा मन केंद्रित होगा, फोकस्ड होगा, कंट्रोल होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सोमान, सोमान के पॉइंट्स को हमको मनन करना। आज बाबा ने मुरली में ऐसे कौन सा पॉइंट है जो टाइटल के रूप में दिया है मुझे, उसको नोट कर लिया और उसके ऊपर जरूर मनन करना है दिन में। सेकंड है कि खुशी के पॉइंट्स, बाबा खुशी में ले आता है। कभी कभी ऐसे ऐसे पॉइंट बोलता है कि कितनी खुशी होती है, जैसे एक दो बताइए ना, एक दो बताइए जो वो बाबा हमेशा खुशी में लाता है एकदम। कितनी भी डिप्रेस्ड होगी, होपलेस आत्मा होगी, वो मुरली पढ़ लेगी तो खुश हो जाएगी। बिल्कुल, हमारा चल रहा है दुर्भाग्य, रो कह रहा है कितने भाग्यशाली हो, है ना। हम तो यहाँ पे रो रहे हैं, अपने कर्मों के हिसाब किताब दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, उसको पता है कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। वो कभी वर्तमान की स्थिति में आत्मा को देखता ही नहीं है, वो त्रिकालदर्शी की स्टेज पे ऑलवेज सेट होके ही देखता है, वो उसके आदि स्वरूप को देखता है। इसलिए कहता है तुम कितने भाग्यशाली हो, तुमको कौन मिला है, वो दुनिया कहां सोई पड़ी है नर्क में, और वो कैसे मर जाने वाले मच्छर जैसे रात में पैदा होते हैं दिवाली में और सुबह मर जाते हैं, वो उनकी स्थिति है। तुम्हारी पूरे कल्प पे राज करते हो, सिर्फ 21 जन्म के लिए नहीं, आज ही बोला है कि अपना अकाउंट भर रहे हो। वो साधारण, ये जन्म भी साधारण नहीं है, इसके पहले के भी जन्म साधारण नहीं, क्योंकि हमने वो अपने योग बल से प्राप्त किए। ये परमात्मा के महावाक्य हैं कि तुम मेरी याद में हो, मेरी श्रीमत में हो, खाता जमा हो रहा है, तो खाता जमा हो रहा, हिसाब किताब रखने वाला तो बाबा ही है ना, वैसे ही देगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब अपने मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले टाइटल्स को लिखना है और उसके ऊपर मनन चिंतन करना है। सेकंड, खुशी के पॉइंट्स लिखने हैं, मुरली में मिल जाते हैं, डेली आते हैं कोई ना कोई, उसको लिखना है। थर्ड है नशा, बाबा दिलाते हैं, नशे में रखते, उस नशे के पॉइंट्स को हमेशा, बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें तो डबल नशा होना चाहिए, किस चीज का डबल नशा होना चाहिए? डबल नशा क्यों बोला है? एक्चुअल में बाबा हमारे लिए ही आते हैं, बाकी सब तो वो आएंगे अपने हिसाब से, हम ही लोग को पढ़ाने आते हैं अपने बच्चों को। डबल नशा क्या है? पहला नशा जैसे अगर आपको अचानक से कोई चीज मिल जाए, एकदम नशा आ जाता है ना, अरे बाप रे मेरे पास ये चीज है, वो नशा आपको भगवान मिला है। सबसे बड़ा नशा तो इसी चीज का होना चाहिए। इस दुनिया में सब जानते हैं, सब मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, सब वो सुबह 4 बजे वो महाकाल की आरती होती है और वो बाबा विश्वनाथ की आरती में जाती थी, उसके लिए 2:30 बजे से लाइन पर खड़े हो जाते थे भक्त लोग, और वो परिक्रमा भी वो गोवर्धन की कितने कोस की है वो करना, वो नंगे पैर वो लेट लेट के भी करती थी माता है वो नारियल ले, कितना कष्ट खुद को देखे और उसको अभी तक ढूंढ रहे, अभी तक नहीं पाया, अभी भी भ्रमित है, नशे की स्थिति में है, भ्रम की स्थिति में, भगवान आएगा, आने वाला है, कलयुग अभी चल रहा है, और हमें भगवान मिला हुआ है, डेली बात करता है, समस्या छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करता है, वो जो मतलब कहने में भी बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, मेरे खुद के तो अनुभव हैं, आपके सबके भी होंगे, कि सीरियसली वो हर जगह अवेलेबल है। तो भगवान मिला है, पहला नशा तो ये। सेकंड बिल्कुल, मैं विश्व की मालिक बनने वाली हूं। जो पूरे शहर में एमएलए को खड़ा होता था उसको देखती रहती थी, वोटिंग पड़ रही है, अच्छा ये भी कुछ चुनाव जीतेंगे, इनके पास बड़ी अथॉरिटी आ जाएगी, ये वो देश का प्रधानमंत्री, सोचती थी अच्छा ये बड़ा बहुत ऊंचा पद है। अभी पता चला खुद ही विश्व के मालिक बनने वाले, पूरे विश्व पे एक छत्र हमारा राज होने वाला है ना, कंडीशंस हैं लेकिन होने वाला, नशे की स्थिति है कि नहीं है, अब वो मैं करूंगी तो राज्य मिलेगा, जैसा श्रीमत है वैसा फॉलो करूंगी। तो पहला नशा भगवान मिला है, दूसरा विश्व के मालिक बनने वाले हैं भाई, ये मामूली बात है, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों की बादशाही बाबा बोलते हैं। तो ये नशे के पॉइंट्स हो गए, पहला हो गया आपका वो पॉइंट टाइटल्स का, दूसरा हो गया आपकी खुशी के, ये सब मैं डेली साकार मुरली से निकालने वाले पॉइंट बता रही हूँ जो डेली निकलते हैं, तीसरा नशे का पॉइंट। अब चौथा पॉइंट आता है रचना के, जो रचता है उसके वास्तविक स्वरूप का, उसके पॉइंट्स बनाने और उस पर मनन करना, मतलब बाप कैसा है, एक्चुअल में क्या है। कई मुरली में पढ़ती थी पहले कि बाबा कहते थे कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोटो में कोई और कोई में भी कोई जानता है, फिर मैं सोचती थी कि आप लोग भी सोचते होंगे कि हाँ वो परमन धाम में रहने वाला निराकार है, उसका नाम शिव है, हम उसके बच्चे हैं, ये नॉलेज यही सफिशियंट नॉलेज होगी, फिर भी वो कहता है कि कोटो में कोई मैं जैसा एक्चुअल में हूं मुझे जानता है। तो क्या है वो एक्चुअल शिव बाबा क्या है, इसके ऊपर जरूर मनन करना चाहिए, दिन में एक पॉइंट जरूर निकालनी चाहिए, परमात्मा वो गुण का सागर है, वो गुण तो लिखे हुए हैं, फिर भी वो कहता है तू मुझे नहीं जानते अभी तक, मैं क्या हूं, शायद कोटो में कोई और कोई में भी कोई जानता होगा, ये सबसे गुहितम बात है और ये मनन के लिए बहुत बेस्ट टॉपिक है कि परमात्मा और कैसे हमको पता चलेगा। डेली साकार मुरली में ही वो अपने कई रूप दिखाता है, बाप है, टीचर है, सदगुरु है, वो तो पता है, बाप की भी डेप्थ में जाओ, पिता कैसा पिता है वो, उसको कंपेयर कर, उसमें से पॉइंट निकाल, वो कैसा शिक्षक है, क्या शिक्षा दे रहा, सिर्फ भगवान देवता बनना है ये शिक्षा दे, किस तरीके से दे रहा, उसकी मेथड क्या है। सदगुरु है मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला है, किस तरीके से मुक्ति देगा, जीवन मुक्ति कैसे मुझे मिल जाए, ऐसा कौन सा तरीका बताता, वो जितना आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे उतना आपकी मनन शक्ति जो होती बढ़ती जाएगी, परमात्मा का एक्चुअल परिचय क्या है। फिर तीसरा है उसकी रचना का जो विस्तार है उसके बारे में सोचना है, उसके पॉइंट्स वो भी डेली मुरली में मिलते हैं, डेली मिलता है मुरली में कि रचना क्या है, उसके विस्तार में जाना है, अच्छा तो कोऑर्डिनेट करना है, मैं अगर यहां बैठ के आज संगम युग में ब्राह्मण जीवन में बाबा की इन बातों को मान रही हूं, अपने आप को खुद चेक करना बाबा के पैरामीटर्स में एकदम ऑनेस्टली, हाँ ये मैं मान रही हूं तो मेरा खाता जमा हो रहा है, तो फिर मैं वैसे वैसे कल्प में ऐसे ऐसे जन्म को पाती जाऊंगी, मतलब ये रचना के बारे में आप सोचो, चाहे अपने बारे में सोचो चाहे दूसरों के बारे में, रचना ही है। तो कभी खुद को ले लिया, कभी किसी धर्म को उठा लिया, कभी सारे धर्मों को, कल्प वृक्ष को ही ले लिया, कभी ये देखा कि कैसे हमारी एनर्जी डिक्रीज हो रही, सतो प्रधान से सतो, फिर रजो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो प्रधान, क्या क्या हो रहा है उसमें, क्या क्या हो रहा है, उसको साक्षियों के देखना है, अपने को वहां फिट करना है, फिर अपने पुरुषार्थ के अनुसार खुद को वहां फिट करना। अच्छा अभी मैं मर जाऊं, बाबा कहते ना अभी तुमको अगर मौत आ जाए तो तुम्हें क्या पद मिलेगा, उस पर मनन चिंतन, ये सब रचना के ही बारे में हम सोच रहे हैं, चाहे अपने बारे में, चाहे विश्व के बारे में, चाहे धर्मों के बारे में, ये रचना की ही चिंतन चल रहा है। तो इसके पॉइंट्स को भी मनन चिंतन, इसको ये मुरली में रोज मिलता है रचना के बारे में अलग अलग तरीके से। फिर आता है लास्ट में अपने अनुभवों और अपने प्राप्तियों के पॉइंट्स के ऊपर अपने को मनन चिंतन करना है। डेली कुछ ना कुछ अनुभव, कुछ ना कुछ प्राप्तियां होती हैं, अगर नहीं हो रही हो तो बेहोशी की स्थिति है, सीधी बात है। अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, प्राप्तियां होना बंद हो गई है, मतलब आप बेहोशी की स्थिति में आ रहे हो, ये संकेत है आपको। योग कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, मन खुश नहीं है, मन हल्का नहीं है, कहीं ना कहीं जैसे कहीं कोई बंधा हुआ है, कहीं फ्री नहीं है, मतलब कहीं आप बेहोश हो रहे हो, शुरुआत हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तुरंत मनन चिंतन के इन पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो मना भाव की वशीकरण मंत्र को पहले खुद को वश करना है हमें, और फिर माया अपने आप वश में आ जाएगी। माया मतलब बेहोशी, मूर्छा, मूर्छा से हम बाहर आ जाएंगे। अगर हम मूर्छित हैं, हमें लग रहा है कि अभी भी देर नहीं, बाबा तो कहते जब पता चल गया कि मेरे में ये वीकनेस है, मनन चिंतन नहीं करते हैं सब, मैंने देखा है, मैं खुद की भी बात, मैं ये जो बोल रहा है ये परफेक्ट नहीं है, ये पुरुषार्थ ही बोल रहा है, क्योंकि पुरुषार्थ में कितने चैलेंजेस आते हैं। हम सोचते हैं, मैं सोचती हूँ आज तो चक्र फिराना है भाई, आज तो जो है विदेही होना है, कम से कम 8 बार तो होना ही है, नहीं हो सकते, नहीं हो पाते, क्योंकि फोकस्ड नहीं है ना, क्योंकि सोचा तो है लेकिन मनन शक्ति नहीं थी, अपने आप को हमने शक्तिशाली नहीं किया था, तो 4 बार हुआ, 5 बार शाम होते होते फिर हीन भावना हो जाती है, अरे ग्लानी होती कि हमने तो सोचा था। तो पुरुषार्थ उसमें कोई बुरी बात नहीं है, जब हम अपने में नहीं, हमको पता चलेगा कि हमारी क्या कमजोरी है, बेहोशी के क्या कारण है, तो मैं कैसे खुद को वहां से बाहर खींच के लेके आऊंगी। तो ये तो अच्छी बात है कि पता चल रहा है कि मेरे में क्या कमी है, तो मतलब कि कुल मिला के मन बना भाव जो मंत्र एक्चुअल सही बात है, वो बीज मंत्र है, यही पूरी मुरली का सार है, प्राण है उसके, ऑक्सीजन है मुरली में पूरे समय, ऊपर से लेकर नीचे तक बाबा एक ही चीज कहते हैं, बच्चे मन बना भाव हो जाओ, अपने मन को मेरे में लगाओ। लोग कहते हैं बाबा की याद पूरे दिन कैसे रहेगी, काम करना है, ये करना है, वो करना है, वो बिंदु रूप की याद थोड़ी करनी है वहां पूरे दिन काम करते समय। बिंदु रूप याद तो जब आप शांति में बैठो तब करनी, काम करते समय क्या करना है, मनन जो हमने पॉइंट्स बनाए थे उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को चलाना है, वही बाबा की याद है, वही मन मनाभाव की स्थिति। तो यही यही हमारी, इसे वो बाबा ने रूहानी जागृति कहा है, कि रूह को जब ये जागृति हो जाती है, उसको स्मृति आती है कि मैं सोई हुई हूं, मुझ में कमी है, मैं बेहोशी की स्थिति में हूं, परमात्मा मुझे ये बता रहे हैं, तो फिर उस पर अटेंशन देके चलना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। रूहानी जागृति एक बार परमात्मा ने दिलाई, लेकिन फिर हम बार बार क्या करते हैं, नशे की स्थिति में जाते हैं, देह अभिमान के, आकर्षणों के, बार बार बेहोश होते हैं, बार बार बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, और कब बाबा से दूर हो जाते हैं। मेडिकल में भी है कि जो बहुत देर तक बेहोश रहता है वो फिर कोमा में जाता है, और कोमा से अगर बाहर नहीं आया तो सीधे ओम शांति, उसको तो फिर एनएस का इंजेक्शन लगा दो, छुट्टी, ठीक हो जाएगा, वो चक के भागेगा बहुत तेज से। तो हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट किए, एंजाइटी के पेशेंट ऐसे ही आते हैं, मैं अरे मुझे क्या हो रहा है, वो लगाया एनएस लोड करके, ये दवा जा रही है ना बहुत अच्छी, अभी देखो ठीक होती हो, ठीक हो जाती है। तो ऐसे यहां पे ब्राह्मण आत्माएं भी हैं, क्या होता है, बेहोशी की स्थिति में है, सब कुछ चल रहा है, अचानक अचानक धीरे धीरे कोमा में जाना शुरू, कोमा से सीधे आउट। तो बाबा कई मुरली में कहते ना, बच्चे बहुत दिनों से खबर नहीं आई, लगता है बच्चा मर गया, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जीते रहो। तो जीते रहो मतलब ऑक्सीजन लेके चलो, माया सर्वव्यापी है, मन मनाभाव का ऑक्सीजन मतलब मनन की शक्ति आपके पास। ये 6 पॉइंट है, डेली साकार मुरली पढ़िए, 6, इसको किसी डायरी पे 6 पॉइंट ऐसे लिख लीजिए, आज की डेट डालिए साकार मुरली की, और उसमें से आपको क्या मिला है टाइटल अपने लिए, वो टाइटल निकाला, एक एक चीज लेनी, खुशी का 1 पॉइंट निकाला, एक पॉइंट अपना आपने नशे का निकाल दिया, एक बाबा क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में आपका क्या एक संकल्प आया कि बाबा क्या है, वो लिख लिया, रचता के बारे में, रचना के बारे में, फिर अपनी क्या अनुभव हुए। अनुभव आपको सुबह नहीं लिखने हैं, अगर सुबह अमृत वेले में कोई अनुभव हुआ हो वो भी अलग बात है, और दिन भर के लास्ट में जब चार्ट भरने जाते हैं तो प्राप्ति उसको भरना है, तो हो तो या मन मना, इससे देखिएगा कितना मन फोकस्ड होता है और वाकई में मन की शक्ति बढ़ जाती है, और यही जो है उस बेहोशी से बाहर आने का एकमात्र तरीका है। ठीक, ओम शांति। मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आई हूं, मैं बीएमएस डॉक्टर हूं, आयुष में, आयुर्वेद में डॉक्टर हूं, और जी अभी मैंने रिसेंटली ग्लोबल हॉस्पिटल ज्वाइन किया है एक हफ्ते पहले। मेरी लौकिक माँ ज्ञान में थी, 2012 में उन्होंने ज्ञान लिया था, है ज्ञान में है, उन्होंने 2012 में लिया, और उसके बाद मैं भी पहले सुनती थी ज्ञान के पॉइंट्स, लेकिन मेरे को लगता था ऐसे कैसे कोई विश्व का मालिक बन जाएगा, मतलब ऐसे कोई विश्व का मालिक बनता है क्या। फिर ये हुआ कि वो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मम्मी जो है मेरी वो टाइटल लेके सोती थी रात में, तो मैं बहुत हंसती थी, ये विश्व कल्याणकारी आत्मा है इनको देख लो। तो वो कहती थी नहीं मैं विश्व कल्याण, तुमको नहीं पता लेकिन मैं हूँ विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं हंसती थी। फिर मैं आई हुई थी, मेरी शादी हो गई थी तो मैं आई हुई थी मायके, तो ये सब चल रहा था प्रोग्राम, तो एक दिन उन्होंने कहा कि सेंटर चले जाओ, ब्रह्मा भोज था, तो कहे जाओ ब्रह्मा भोज करके आओ, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, उसमें क्या है, गए ब्रह्मा भोज के लिए, फर्स्ट टाइम मैं सेंटर में गई थी, मैंने फर्स्ट टाइम ब्रह्म कुमारी सेंटर देखा था, तो उनने क्या किया, दीदी ने थोड़ा छोटा सा सेंटर था तो उसी में, क्योंकि भाई बहनों को अरेंज करके खिलाना भी था, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो कुछ भाई लोग खा रहे थे, खाली हो जाएगा तो आपको बैठाते, आप इधर बैठो मेडिटेशन रूम में, तो मैं मेडिटेशन रूम में गई तो वो ब्रह्मा बाबा की बड़ी सी फोटो लगी थी, वो तो पता नहीं था मुझे ब्रह्मा बाबा है, बस ये था कि यही लगता है इनके, इनको विश्व का मालिक बनाने वाले, और फिर वो पॉइंट रखा था तो पॉइंट, लेकिन थोड़ी देर जैसे ही वेट करने के बीच में मेरे को थोड़ी सी मेरा मन शांत हुआ, तो जैसे किसी ने खींच लिया हो, मतलब वो फीलिंग्स आज तक मुझे होती है, जैसे कोई चीज आपको बार बार आप वहां से मन हटाना चाहो और आपको बार बार वही मन में आ रहा है कि इनके बारे में जैसे जानना है, या मन शांत हो रहा है, ऐसे कुछ कुछ हो रहा। फिर मैं ब्रह्मा भोज लिया और घर आई, तो फिर चोरी से मम्मी को पता ना चला क्योंकि मैं हंसती थी उनपे, तो मैंने मुरली निकाली, और फिर मुरली में क्या लिखा है कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही कहां से शुरू हो रही, कहां पे खत्म हो रही, कहां पे शुरू हो रही, कहां, फिर भी उसको पढ़ के अच्छा लगा, फिर चली गई वापस, फिर मेरे को कंसीव हो गई थी तो प्रेगनेंसी थी, तो मैं उसमें शिवानी दीदी को सुनती थी, शिवानी दीदी से बहुत पावर मिलती थी मुझे, कुछ ऐसी परसेज अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो बाद में फिर मैं जब बच्चा हुआ फिर मैं आई अपनी माँ के पास, मायके में ही सारा कमाल हुआ, फिर मेरे को क्या सेंटर गई थी मैं, फिर मेरे को वो जिज्ञासा बनी हुई थी, वो शिवानी दीदी से भी कुछ आंसर मिल गए थे मुझे अपने क्वेश्चंस के, कि देवी देवता ही क्यों बनते हैं, हम ही कैसे थे देवी देवता, ये सारे आंसर धीरे धीरे मिल रहे थे। फिर मुझे मुरली पढ़ना थोड़ा आना चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आती थी मुरली, तो उन्होंने कहा दीदी ने आप 7 दिन का कोर्स कर लो, उन्होंने मुझे महाशिवरात्रि 2014 में उन्होंने कोर्स करवाया मुझे, और फिर मैं मुरली डेली पढ़ने लग गई, और बहुत ही चमत्कारी चीज है। मैं मेडिटेशन, मैं अमृत बेला नहीं करती थी, योग नहीं करती थी, धारणाओं पे नहीं चलती थी, लेकिन मुरली को तो मैंने ऐसे पकड़ लिया था कि जैसे वो कोई डूब रहा हो और अचानक किसी को हाथ मिल जाए ऊपर आने के लिए, वो ऐसे थे कि अगर एक दिन भी वो मिस हो जाती थी तो ऐसा लगता था कि सफोकेशन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत जैसे, वो नहीं लगती बेचैनी ऐसे। धीरे 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 तो बाबा ने ऐसा खींचा कि खींच ही लिया, आज यहां बैठा लिया। यही है, हाँ मम्मी विश्व कल्याणकारी तो है ही, वो तो मेरा भी कल्याण कर दिया उन्होंने, थैंक टू हर, एक्चुअल में वो विश्व कल्याणकारी है सीरियसली। क्योंकि माताएं, कल बहन भी कह रही थी कि वो सब सारी सेवाएं करती हैं और उसके बाद भी वो बाबा को कितनी समर्पित है, रात में बिना चार्ट भरे नहीं सोना, 20 मिनट 10 मिनट बाबा की याद में उनसे बातें करके सोना, ये एक टाइटल जरूर लेके सोना, कोई ना कोई उसके बारे में सोचते हुए सोना, फिर उसी टाइटल को उठ के उसी बारे में चिंतन करना 5 मिनट, उनका ये नियम बना रखा है उन्होंने, और ये अच्छा भी है, तो उनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, तो मेरा तो कल्याण कर दिया।
मम्मी तो आपकी है।
हाँ मम्मी तो मेरी ही है सी। बाबा के बच्चे हम सब। यही है सब। अब तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ यहाँ आ गई हूँ। ठीक, ओम शांति।
जीना है जागे।